मेरे बहुत बहुत प्यारे दोस्तों, आप सबको डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 7 मई 2015 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी के साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उस एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपना एडमिशन कराया है। उनका नाम है कपिल शर्मा, वो नसीराबाद अजमेर यानी कि राजस्थान से हैं। बहुत बहुत स्वागत है कपिल आपका एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से। आप आइए और निश्चित रूप से यहां जो 15 दिन का कुंभ मेला लगेगा, इसे मैं एक तरह के ज्ञान का कुंभ मेला ही कहता हूं मित्रों, जो आप लोगों के सहयोग से संभव हो सकता है, हो पाता है। और निश्चित रूप से इसमें जब हम सब मिलकर डुबकी लगाएंगे और डुबकी लगाने के बाद जब यहां से आप सब लौटेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास एक नई चेतना होगी, एक नई दृष्टि होगी, नया उत्साह और नई ऊर्जा भी होगी। और ये सब कुछ जो नया नया होगा, ये निश्चित रूप से आपके जीवन को नया बनाने में कुछ न कुछ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएगा। तो मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक रूप से स्वागत है। दोस्तों, अब मैं आता हूं अपने फर्स्ट स्टेज पे, जो जिसे आप लोग एक तरह से मोटिवेशन का स्टेज आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। और मैं इसकी कंटिन्यूटी को इसलिए अब छेड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि आप लोगों का इसके प्रति जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा है। इक्के दुक्के अगर मैं फीडबैक को छोड़ दूं तो मैं समझता हूं कि शायद 99.5% स्टूडेंट इसे पसंद कर रहे हैं। और केवल पसंद ही नहीं कर रहे हैं, पसंद नापसंद को तो मैं उतना महत्व नहीं देता हूं मित्रों, जितना ज्यादा इस बात को महत्व देता हूं कि आपके जीवन में उसका रोल क्या है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। और मुझे दिखाई देने लगा है कि इसका कंट्रीब्यूशन है। और सच पूछिए तो ये इसका प्रमाण मुझे जीता जागता प्रमाण मैं कहूं उस समय मिलता है, जो फर्स्ट हैंड प्रमाण मिलता है जब यहां क्लासेस होती हैं। जो स्टूडेंट आते हैं, 500 लड़कों का ग्रुप होता है, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आए हुए लड़के, अलग अलग पृष्ठभूमि के स्टूडेंट्स, न केवल पारिवारिक और स्थान की ही पृष्ठभूमि बल्कि एजुकेशन की भी पृष्ठभूमि। और इसके बाद वो जिस शांति, सहयोग और प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ 15 दिन की क्लासेस अटेंड करते हैं, वो इस बात को प्रमाणित करती है कि उनमें जो मैं एक परिवर्तन देखता हूं या इस तरह का अंदर एक जो बैलेंस देखता हूं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद ये एक जो ऑडियो का जो एक मोटिवेशन का जो पार्ट होता है उसकी देन होती है। क्योंकि मित्रों, मैं लगभग ये मानकर चलता ही हूं कि यहां जितने भी स्टूडेंट आते हैं वो डेफिनेटली ऑडियो लेक्चर सुनते ही होंगे, और यदि वो ऑडियो लेक्चर सुनते हैं तो मोटिवेशन के पार्ट को मिस नहीं करते होंगे। और यदि जो नहीं भी सुन रहे हों उनसे मैं अर्ज करूंगा कि वो प्लीज ऑडियो लेक्चर जरूर सुने। तो दोस्तों, हम लोग इससे पहले क्वांटम फिजिक्स के कुछ सूत्रों की, कुछ फार्मूले की बात कर रहे थे, उसके फाउंडेशन की बात कर रहे थे, और अब मैं उसके एक तरह से कहूं कि लगभग अंतिम सूत्र की ही बात कर रहा हूं। और हो सकता है कि कल फ्राइडे है, कल इस पर हम लोग थोड़ी सी बात और कर लें, अदरवाइज लगभग अब इसे मैं समाप्त करना चाहूंगा। तो आज एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूं जो क्वांटम फिजिक्स का ही है और उसका एक लीप सिद्धांत के नाम से ये जाना जाता है। लीप का मतलब आप जानते हैं, उछलना, जंप करना, उस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब आप देखिए कि क्वांटम जो लीप सिद्धांत, इसका नाम ही है क्वांटम लीप थ्योरी, उसको क्या कहता है। आगे अभी आप पिछले जो तीन सिद्धांत पढ़ चुके हैं याद रखिए, और अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा भी कि ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। ये जो तीसरा सिद्धांत मैं आपको जो बता रहा हूं, सॉरी चौथा सिद्धांत जो बता रहा हूं, ये पहले के तीन सिद्धांतों से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, कहीं आपको रिसेंबल भी करता हुआ उसके जैसा भी लगेगा। इस सिद्धांत के अनुसार मित्रों, की कोई भी कण जो पूरे के पूरे इस अनंत ब्रह्मांड में है, कोई भी कण बीच की दूरी तय किए बिना ही, वो डिस्टेंस को पूरा नहीं करते, डिस्टेंस में ट्रेवल नहीं करते, बिना ही एक से दूसरे स्थान तक पहुंच सकता है। यह इनका एक तरह से चौथा सिद्धांत कह लीजिए, चौथा चमत्कार है कह लीजिए। अब आप देखिए कि एक कण है, मान लीजिए कि मैं भोपाल में रहकर ये बैठ करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो भोपाल में एक कण है और ये कण आप जहां भी सुन रहे हैं वहां आपके पास पहुंच जाएगा विदाउट ट्रेवलिंग। अगर आपके बीच और मेरे बीच 2000 किलोमीटर की दूरी है तो ये 2000 किलोमीटर ट्रेवल नहीं करेगा, ये बिना ट्रेवल के वहां तक पहुंच जाएगा, यानी कि वो उछल कर पहुंच जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि उछलना भी तो एक तरह से ट्रेवल करना ही है, क्योंकि उछलने का मतलब है कि आप पहले ऊंचाई पे जाएंगे और एक पर्टिकुलर ऊंचाई पर पहुंचने के बाद और फिर नीचाई पर धरातल पर आ जाएंगे। लेकिन ये जो लीप सिद्धांत है ये उस तरह का उछल कर पहुंचने का सिद्धांत नहीं है मित्रों, मतलब यहां से वो जनरेट होता है और बिना ट्रेवल किए उस स्थान पर वो उपस्थित हो जाता है। मित्रों अक्सर आप लोगों ने इस तरह की कहानी किससे सुने होंगे, खासकर गुरु वगैरह के रूप में आप देखिए कि जब भी गुरु शिष्य याद करता है गुरु उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं, या गजराज ने जब गजराज डूब रहा था तो उसने भगवान को पुकारा और भगवान विष्णु उस डूबते हुए गजराज को बचाने के लिए आ गए, या द्रौपदी ने भरी सभा में अपने रक्षा के लिए जब कृष्ण को बुलाया आमंत्रित किया तो कृष्ण वहां आ गए। अगर कोई ट्रेवल करके आएगा तो उसे वक्त लगेगा, अगर हम बॉडी की बात करें तो फिजिकल बॉडी को तो टाइम लगता है, साउंड बहुत तेजी के साथ ट्रेवल कर लेगा, लाइट बहुत ही तेजी के साथ ट्रेवल कर लेगा, लेकिन फिजिकल बॉडी तो उतनी स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि फिजिकल बॉडी में हमारे अपने आप ट्रेवल करने की कितनी ताकत हो सकती है, आप क्या कर सकते हैं, हम समझ लीजिए उड़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, हालांकि वो क्षमता हम में नहीं है, हम दौड़ सकते हैं अगर हम अपने अभी की भौतिक शरीर की बात करें तो आप कितनी स्पीड से दौड़ सकते हैं, 100 मीटर को दौड़ने में भी जो अभी तक रिकॉर्ड है ऑलमोस्ट 9 सेकंड चाहिए, और अगर 100 किलोमीटर दौड़ना पड़ जाए तो इस एवरेज को मेंटेन नहीं किया जा सकता, तो इसमें टाइम लगेगा। फिर भी अगर फिजिकल बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रहा है ट्रैवल करके और हजारों किलोमीटर की दूरी को ट्रैवल करके विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि वो ट्रैवल नहीं कर रहा है, दूरी को तय नहीं कर रहा है, वो सीधे सीधे वहां से चलकर और दूसरे स्थान पर पहुंच जा रहा है जहां उसे पहुंचना चाहिए, वहां वो लैंड कर जाता है। तो मित्रों ये जो क्वांटम फिजिक्स का ये जो सिद्धांत है ये एक तरह से जो हम भौतिक जगत में जो कुछ भी देखते सुनते हैं हमारे ज्ञान की जो सीमाएं हैं जो परिधि हैं उनको तोड़कर एक अलग ही दुनिया से हमारा परिचय कराते हैं, और वो जो दुनिया है वो तरंगों की दुनिया है, वो एक ऐसी अदृश्य दुनिया है जो दिखाई नहीं देती है लेकिन महसूस की जा सकती है। मित्रों पिक्चर फिल्म का एक गीत है, दिल ने दिल की बात कही और रो दिए, तो ये दिल ने दिल की बात कही नहीं जा रही है, क्योंकि बात तो मुंह से कही जाती है, लेकिन दिल ने दिल की बात कही और रो दिए, तो ये बात कैसे कही जा रही है, वो जो साउंड है वो कैसे ट्रेवल कर रहा है, तो ये सब के सब क्वांटम फिजिक्स में आते हैं। और मित्रों मेरा मकसद क्वांटम फिजिक्स के बारे में बताने का केवल इतना था कि हमारे जो ज्ञान की सीमा है वो वहीं तक है जो हमें दिखाई देती है, जो जिसका हम विश्लेषण कर सके हैं, जिसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट कर सके हैं, लेकिन जो हमारी ज्ञान की सीमा है वो प्रकृति के ज्ञान की सीमा नहीं है। प्रकृति जो है वो सुपर टैलेंटेड एक्जिस्टेंस है, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो सुपर टैलेंटेड टैलेंट का है। आप देख रहे हैं कि कैसे थोड़ी सी चीजें हुई और उसने इस जगत में क्या से क्या बना दिया, उस टैलेंट की आप कल्पना कीजिए। तो अभी हमारी जो ज्ञान की सीमा है वो उस टैलेंट तक पहुंच नहीं पाई है, अब धीरे धीरे हम उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों इसके उस तरह के ज्ञान की हमें सच पूछिए तो जरूरत नहीं है, खासकर जिस पर्पज से ये ऑडियो गाइडेंस तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे मेरा जो मकसद था कि मैंने क्वांटम फिजिक्स को आपके लिए क्यों चुना और खासकर मोटिवेशन वाले पार्ट को, इसलिए दोस्तों कि लगभग एक साल से अधिक मेरे इस आप कह लीजिए कि ऑडियो गाइडेंस के हो गए या मोटिवेशन वाले पोर्शन को भी एड्रेस करते हुए हो गए हैं। इसमें मुझे लगा कि बहुत सी चीजें हमें बिल्कुल उपदेश के फॉर्म में लगती हैं, प्रीचिंग के फॉर्म में लगती हैं। और अब आज की जो पीढ़ी है, और ये गलत नहीं है, जो यंग जनरेशन है वो लॉजिकल ज्यादा है, वो चीजों पर सीधे सीधे भरोसा नहीं करती है, उस पर विश्वास नहीं करती है, उसे लगता है कि कुछ तर्क चाहिए, इसके पीछे विज्ञान की ताकत होनी चाहिए। और मैं इसे बहुत बड़ी बात मानता हूं और बहुत अच्छी बात भी मानता हूं। अगर आपकी डिमांड ये है कि इसके पीछे क्या कारण है बताया जाए, तब हम इस पर विश्वास करेंगे, तो ये मैं समझता हूं कि होना ही चाहिए। तो मुझे लगा कि अब इतने समय के बाद मुझे क्वांटम फिजिक्स की थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए कि आप सब इस पर थोड़ा सा विश्वास कर सकें, थोड़ा सा भरोसा कर सकें। क्योंकि यदि आपका इस पर विश्वास हो गया, इस पर यदि थोड़ा सा भी आपका भरोसा हो गया, तो निश्चित रूप से आप की जो पर्सनालिटी होगी वो एक अलग डायमेंशन में ट्रेवल करेगी, उसकी जो दिशा होगी वो अलग होगी, और आप सब कुछ उसी को नहीं मानेंगे जो आपको सही लगता है, जो आपके स्वार्थ को पूरा करता है और जो आपके लिए जरूरी है। आप इनसे हट करके भी कुछ करना और सोचना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं, कोई एक दूसरी दुनिया भी है और मुझे उस दूसरी दुनिया के लिए काम करना है। और मित्रों, जब आप ऐसा करने लगेंगे तब आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आप उसे महसूस करेंगे। एक समय ऐसा आएगा, लेकिन हड़बड़ी में नहीं, ये धैर्य से होगा। मित्रों, क्वांटम फिजिक्स की चर्चा को मैं समझता हूं कि मुझे अब यही विराम देना चाहिए। ये विषय थोड़ा सा कठिन जैसा था, थोड़ा सा अविश्वसनीय जैसा भी आप लोगों को लग सकता है, लेकिन मैंने इसकी चर्चा जानबूझकर की है। यदि आप इसके बारे में और भी ज्यादा जानना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास इस तरह के मेल आए हैं, तो मैं उन्हें दो पुस्तकें सजेस्ट करना चाहूंगा। एक किताब है क्वांटम जगत का रहस्य, इसका नाम है हिंदी में मैं बता रहा हूं, क्वांटम जगत का रहस्य, ये रजत चंदा जी की लिखी हुई किताब है, बहुत पतली सी किताब है, नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी है और मुश्किल से 100 पेज की किताब होगी, 115 पेज की करीब किताब है। क्वांटम जगत का रहस्य रजत चंदा जी का है की किताब है ये हिंदी में भी अवेलेबल है, उसका अनुवाद है ये, आप ये किताब पढ़ सकते हैं। दूसरी जो किताब है मित्रों, जो मुझे बहुत पसंद आई है, वो है द ताओ ऑफ फिजिक्स। ताओ ऑफ फिजिक्स हिंदी में भी अवेलेबल है और ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है मित्रों। और इसके जो लेखक हैं वो फ्रिट्ज़ ऑफ काप्रा, ये इसके लेखक हैं। ये काफी मोटी किताब है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप समझ लीजिए कि लगभग 400 पेज की किताब है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। ये आपको दोनों नेशनल बुक ट्रस्ट की किताबें तो खैर हर जगह मिल जाती हैं, अदरवाइज ये दोनों ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप मंगा सकते हैं यदि आप इसे और डिटेल में जानना चाहते हैं। तो मित्रों, अब मैं क्वांटम फिजिक्स की चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। हम कल से दूसरे इश्यूज पर, जो हमारे डेली रूटीन लाइफ की के जो इश्यूज होते हैं, उन पर हम बात करेंगे। अब मैं आता हूं कल की AIR न्यूज के ऊपर। मित्रों, कल के AIR न्यूज में काफी कंटेंट है, सिविल सर्विस की तैयारी की दृष्टि से काफी कुछ बातें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहली खबर तो फ्रेंड्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर के थी, उसका जो संशोधन, उसका जो विधेयक है, आपको मालूम है कि वो लोकसभा में पेश किया गया, परसों उस पर बहस हुई थी, जिस पर ये कहा जा रहा था कि ये स्थायी समिति को सौंप दिया जाए, प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। इसके बारे में मैंने कल चर्चा की थी और आपको समितियों के बारे में बताया था, लेकिन जो लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिस जो लीडर थे, उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया और इस पर मतदान हुआ और कल लोकसभा में वो पारित हो गया। मित्रों, न्यूज को ध्यान में रखते हुए मैं दो तीन चीजें आपको और बताना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा, या कह लीजिए कि आपकी एक तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहूंगा। वो ये, आपने न्यूज में सुना कि कांग्रेस ने वॉकआउट किया, राइट? तो मित्रों, कांग्रेस ने वॉकआउट क्यों किया? कांग्रेस को अगर विरोध करना था जीएसटी को, क्योंकि वो मांग कर रही थी कि स्थायी समिति को सौंपी जाए और सरकार इस बात को नहीं मान रही थी, तो सीधी सीधी सी बात है कि वो उसके अगेंस्ट वोटिंग करे, क्योंकि आप देखते हैं कि वोटिंग भी जो अगेंस्ट में पड़ी है वो 40 से कम है, और सरकार को इससे पारित कराने के लिए दो तिहाई बहुमत चाहिए। दो चीजें याद रखिएगा मित्र, तो तीन चीजें यहां विशेष रूप से याद रखिए, जो बेसिक्स होती हैं उस पर जो आपकी पकड़ होनी चाहिए वो इन चीजों पर ध्यान देने से पकड़ होगी, किताबों पर को रटने से पकड़ नहीं होगी। नंबर एक, ये जो है ये संविधान संशोधन विधेयक है, और अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक होता है तो उसे दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए, अदरवाइज जो सामान्य विधेयक होगा तो उसे सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। दो तिहाई का मतलब है 66%, ऑलमोस्ट 66%। पहली बात। दूसरी बात, ये जो 66% होगा ये टोटल नंबर ऑफ हाउस नहीं होता है, मतलब मान लीजिए कि किसी हाउस के टोटल मेंबर्स की जो संख्या है वो 100 है, तो ऐसा नहीं कि इसको 66 वोट चाहिए ही। वो जो नियम है वो ये है कि जो हाउस में उस समय प्रेजेंट थे, यदि 100 के 100 सदस्य अगर मौजूद हैं तब तो 66 चाहिए, लेकिन अगर 50 ही मौजूद है तो आप क्या करेंगे, फिर कहां से 66 लाएंगे? तो इसमें उपस्थित सदस्यों का 66%, राइट? तो अगर 50 सदस्य उपस्थित हैं तो इसका मतलब हुआ कि उनको 33 वोट चाहिए, 33 मत चाहिए। अब आप देखिए कि कांग्रेस ने वॉकआउट क्यों किया, वॉकआउट करने का मतलब क्या होता है मित्रों, इसके अर्थ को समझिए। वॉकआउट का ऐसे तो सामान्य सा मतलब है कि भैया आप जो बकवास कर रहे हैं इसमें हम शामिल नहीं होना चाहते, हम आपका विरोध करते हैं और हम बाहर चले गए, सामान्य रूप से यही इसका अर्थ होता है, और यहां भी इसका अर्थ है, यही अर्थ है। लेकिन अगर आप बकवास मान रहे हैं तो उसके खिलाफ वोट दीजिए, लेकिन मित्रों ये इस तरह से काम नहीं होते हैं, है ना? राजनेता अगर हमारे इस तरीके से काम करेंगे तो देश तो पता नहीं क्या, देश का क्या से क्या हो जाएगा। वो बहुत सोच समझकर कदम उठाते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी ये लग रहा है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल है ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिल कांग्रेस के समय में ही तैयार हुआ था और कांग्रेस भी इसके फेवर में थी। तो अब क्या किया जाए? तो कांग्रेस ने यह कहा कि हम मतदान में भाग नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब हुआ वॉकआउट में कि हम मतदान में भाग नहीं ले रहे हैं, यानी कि इसके खिलाफ नहीं है। अगर वो हाउस में मौजूद होते तो या तो फेवर में वोट डालते या अगेंस्ट में वोट डालते, तो हम मतदान में भाग नहीं ले रहे हैं तो हम वॉकआउट कर रहे हैं। तो जब आप वॉकआउट कर ले, चलिए हम ये एक गणित लेते हैं कि हाउस की संख्या 100 है, ठीक है? जो 100 सदस्यों की संख्या है इसमें 40 वोट तो सरकार को मिलने वाले हैं, 40 मिल रहे हैं, लेकिन उसको चाहिए 66। तो अब क्या किया जाए? बाकी जो वोट है वो कांग्रेस के पास है, पूरे के पूरे विपक्ष के पास है, वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। तो अगर उसमें मान लीजिए कि कांग्रेस के सदस्यों की संख्या है 40 मान लीजिए, या कांग्रेस के सदस्यों की संख्या हो गई 40, तो 40 लोग उठ करके बाहर चले गए, तो 40 बाहर चले गए तो अब हाउस में कितने लोग बच गए? वो बच गए 60, ठीक है? अब 60 का 66% चाहिए, तो 60 का 66% लगाइए तो 40-41 के करीब बैठेगा। तो यानी कि अगर अब इनको दूसरी पार्टी के वोट नहीं भी मिलते हैं और इनके पास 40 अपने मेंबर हैं तो भी अब ये विधेयक पारित हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस वॉकआउट करके सीधे विरोध नहीं कर रही है, अप्रत्यक्ष रूप से विरोध भी कर रही है कि हम आपके साथ नहीं हैं, लेकिन उसने इसको पारित होने में स्वयं को बाधा नहीं बनने दिया। ये इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग निकलता है मित्रों, ये आपको मालूम होना चाहिए। है ना, तो वॉकआउट करना एक तरह से एक सॉफ्ट स्टेप है ना, एक कोमल कदम है आप कह लीजिए। खिलाफ मतदान देना तो हार्ड स्टेप है कि हम बिल्कुल इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वॉकआउट करना एक सॉफ्ट प्रोटेस्ट है आप कह लीजिए, राइट। तो मित्रों ये आपके आ, 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 आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब आप देखें कि एक दो न्यूज में और भी बात थी कि सरकार ने एश्योर किया है कि वो 5 साल तक जो स्टेट गवर्नमेंट को जो इससे नुकसान होगा उसकी भरपाई करेगी। आंकड़ा आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि शुरू के 3 साल तक राज्यों को जो नुकसान होगा उसका केंद्र सरकार 100% देगी, इसके बाद 4th ईयर में उसका 75% देगी और 5th ईयर में उसका 50% देगी और फिर बाकी समय में वो सबके लिए बराबर हो जाएगा। अब मित्रों देखिए कि अब क्या होगा, लोकसभा में ये पारित हो गया विधेयक, अब ये राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी अब वही स्थिति आएगी क्योंकि कांग्रेस की मांग राज्यसभा में रहेगी कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाए। अब देखिए कि वहां क्या होता है क्योंकि राज्यसभा से पारित हुए बिना ये कानून तो लागू होगा नहीं। अब केंद्र, अगर राज्यसभा में कांग्रेस ने ये मांग की कि ये प्रवर समिति को जाना चाहिए और मान लीजिए कि प्रवर समिति को भेज भी दिया गया तो अब एक स्थिति बेहतर ये हो जाएगी क्योंकि प्रवर समिति को आप कोई भी काम देते हैं तो आप डेडलाइन दे देते हैं कि भाई आप 1 महीने में दीजिए, आप अपनी रिपोर्ट 2 महीने में दीजिए। तो मान लीजिए कि अगर हम मई की ही बात लें और मई में ही इसको प्रवर समिति को सौंप दिया गया तो सरकार कह सकती है कि अगला जो हमारा संसद का सत्र शुरू होगा आप उससे पहले पहले या बजट सत्र से पहले पहले हमें आप अपनी रिपोर्ट दे दीजिए, प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी और फिर मान लीजिए बजट सत्र ही ले लीजिए, वो अगर बजट सत्र शुरू हुआ तो उस समय प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर फिर से मतदान करा लिया जाएगा और अगर वो पारित हो गया तो सरकार का जो एक कमिटमेंट है, सरकार जो चाहती है कि 2016 से वित्तीय वर्ष से ये GST लागू हो जाए तो वो लागू हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से रास्ता साफ हो गया है। अब मित्रों इस पूरे के पूरे मॉडल में, इस क्वेश्चन के मॉडल में मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, वो ये कि इसमें विरोध कहां हो रहा है, डेडलॉक कहां आ रहा है, बाधाएं कहां आ रही हैं। देखिए आपको बहुत सी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, टेक्निकल चीजें मिलेंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें मिलेंगी, है ना, आंकड़े मिलेंगे। अपने दिमाग में आप दो चीजें बहुत क्लियर रखिए, जो सबसे बड़ी बाधा है राज्य इसका विरोध क्यों कर रही है। पहली बाधा है आर्थिक हानि, राज्यों को यह लग रहा है कि अगर GST लागू हो गया तो उन्हें बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, इसीलिए केंद्र सरकार ने एश्योर किया जिसकी बात अभी हम लोगों ने कही कि 5 साल तक जो भी उनका नुकसान होगा तो शुरू के 3 साल तक उसका 100% केंद्र सरकार भरपाई करेगी, फिर 4th ईयर में 75% करेगी, फिर 5th ईयर में 50% करेगी। अब आर्थिक हानि कैसे होगी, देखिए होगा क्या कि जो GST में जो वस्तु पर जो टैक्स लगेगा वो कंज्यूमर के एंड पे लगेगा जब उसका उपभोग होगा। अब दो राज्य हम लेते हैं जैसे तमिलनाडु है और महाराष्ट्र मान लीजिए, तो ये जो स्टेट हैं ये इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है, यहां चीजों का उत्पादन होता है लेकिन कंज्यूम तो वहां वो चीजें नहीं होती हैं। अगर आपके गुड़गांव में इतनी सारी गाड़ियां बन रही हैं मारुति तो गुड़गांव में ही तो नहीं बिक रही है ना, वो पूरे वो बिक रही है पता पूरे देश में जाकर के, तो जब वो कंज्यूमर का पॉइंट होगा वहां वो टैक्स कलेक्ट होगा, अब उस वो राज्यों को जाएगा लेकिन उस वो जो उस उनका जो कलेक्शन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा राज्यों का। तो जो स्टेट एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है या कह लीजिए कि जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी अच्छा है उनको लग रहा है कि इससे उनका बहुत ज्यादा नुकसान होगा, उसको राज्य सरकार ने इंश्योर किया है कि हम उसकी पूर्ति करेंगे। आर्थिक हानि, इसीलिए इस आर्थिक हानि में चूंकि राज्यों का बहुत दबाव था तो आप देखिए कि उसमें कुछ चीजों को निकाल दिया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से अलग कर दिया गया जिसमें आप एक तंबाकू, शराब और पेट्रोलियम पदार्थों को इससे बाहर रख दिया गया है क्योंकि राज्यों को इस पर टैक्स लगाने से बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, बहुत ज्यादा राजस्व मिलता है, तो ये उन पर कह दिया गया कि भाई ठीक है आप अपने तरीके से लगाइए। दूसरी चीजें थी राज्यों के दिमाग में यह भी था कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चूंकि फिर केंद्र लगाएगी सभी जगह एक जैसा ही होगा पूरे राज्यों में तो इनके अपने अधिकारों का हनन होगा, फिर राज्य अपनी वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगा सकते, फिर इनका इतना बड़ा पूरा का पूरा एक सर्विसेज का इंस्पेक्टर से लेकर के और ऊपर अफसर हैं ये इनके अपने कंट्रोल में नहीं रहेंगे, उस तरह का उनका कैडर भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा, तो राज्यों को यह भी लग रहा था उनके अधिकार क्षेत्रों में कटौती होगी। इसलिए राज्य इसके बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं थे। लेकिन चलिए बातचीत होती रही तो अब स्थिति बेहतर हो गई है क्योंकि यह नेशनल इंटरेस्ट में है। और सच पूछे तो अब जिस तरह का इंटरनेशनल सिनेरियो बन रहा है उसमें भी यह जरूरी हो गया था कि इस तरह का किया जाए। तो मित्रों, ये जीएसटी को लेकर के मैंने कुछ बातें आप लोगों से की हैं, फंडामेंटल की बात की है और दूसरे बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है, फ्रेम की बात की है। इस फ्रेम में अब यदि आप जीएसटी को समझने की कोशिश करेंगे, जो भी मटेरियल आपके पास है इस फ्रेम में जब आप देखेंगे उसको फिट करेंगे, तो आपको लगेगा कि अगर इस पर कोई भी प्रश्न पूछा गया तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। मित्रों, अब मैं दूसरे एक विधेयक पर आता हूं, वो भारत बांग्लादेश सीमा संशोधन विधेयक है। आपको आपने न्यूज में सुना है कि ये राज्यसभा में पारित किया गया और एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसका मतलब है कि पूरा देश इस विधेयक को वेलकम कर रहा है क्योंकि राज्यसभा में भी सभी पार्टियों के मेंबर्स हैं। अब निश्चित रूप से अब ये लोकसभा में आएगा। देखिए, विधेयक किस कहीं भी रखा जा सकता है, यह बात अलग है कि जो धन विधेयक होगा वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं। तो ये राज्यसभा में रख दिया गया, राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया, तो अब ये लोकसभा में आएगा और लोकसभा में भी ये दो तिहाई बहुमत से पारित होना इसका अनिवार्य है। चूंकि राज्यसभा में सभी पार्टियों ने समर्थन किया है इसका, तो लोकसभा में भी स्वाभाविक रूप से इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। न्यूज में यह भी बात बताई गई थी मित्रों कि इसके माध्यम से 111 गांव जो है ना वो बांग्लादेश से भारत को मिलेंगे और भारत 51 गांव बांग्लादेश को देगा। इस तरह के आंकड़े भी थे, अखबारों में अब आना शुरू होगा। आपको ये जो भारत बांग्लादेश सीमा संशोधन जो विधेयक है, जो अपनी तैयारी करनी है सिविल सर्विस की दृष्टि से, वो कि सबसे आपका जो मेन पॉइंट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इसके होने से अब भारत को क्या लाभ होगा, ये भारत के लिए किन दृष्टियों से हितकर है। अब उनको भूल जाइए प्रोविजन फलाने 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 प्रोविजन, अब बेसिक तो आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप कैसे समझ पाएंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से आपकी जानकारी में होनी चाहिए। तो मित्रों, इसको अब अखबारों में ही आना शुरू होगा। जैसे आज के इकोनॉमिक टाइम्स में एक एडिटोरियल कमेंट है, इसका जो फर्स्ट पैरा है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, उसको मैंने अंडरलाइन भी किया। इसमें इन्होंने बताया है, बड़े खूबसूरत तरीके से बताया है कि हम निश्चित रूप से अगर हम जमीन की बात करें तो 40 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी कम हो जाएगी, हमारे देश की सीमा से 40 स्क्वायर किलोमीटर कम हो जाएगी, लेकिन हमको दूसरे फायदे बहुत होंगे क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका है, जो खासकर चाइना से और बर्मा से, म्यांमार जिसको हम कहते हैं, उससे जो हमारा एरिया जो बॉर्डर जो मिलता है उस पर हमारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश से जो हमें गांव मिलेंगे बदले में, तो उसकी वजह से उस एरिया तक हमारी सीधी पहुंच हो जाएगी। सीधी पहुंच हो जाने के कारण उसमें हमारा समय भी बचेगा और हमारा धन भी बचेगा क्योंकि घुमावदार रास्ता कम हो जाए। तो व्यापार की दृष्टि से भी हमको फायदा होगा, सीमाएं हमारी ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगी और उस सीमा से जो टेररिज्म का जो एंट्रेंस होता, जो प्रवेश करते थे भारत में, उस पर भी रोक लग सकेगी। साथ ही अगर टेररिस्ट का मुकाबला करना है तो वो भी भारत के लिए बहुत आसान हो जाएगा और निश्चित रूप से बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध और ज्यादा घनिष्ठ होंगे ही होंगे। एक प्रॉब्लम केवल और रह जाएगी, वो तिस्ता जल के बंटवारे के बारे में, देखते हैं कि उसको भी धीरे से सॉल्व कर लिया जाएगा। और आप कह सकते हैं कि हमारे अभी प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेते ही जो एक सिग्नल दिया था अपने खासकर फॉरेन पॉलिसी में कि नेबरहुड फर्स्ट अप्रोच को लेकर के चले थे कि हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं सबसे पहले हमें उन्हें महत्व देना चाहिए और उनके साथ अपने मित्रता के संबंध घनिष्ठ करने चाहिए। तो बांग्लादेश के साथ हुआ यह समझौता कुछ उधर इंगित कर रहा है। तो मित्रों, ये बांग्लादेश सीमा संशोधन, भारत बांग्लादेश सीमा संशोधन विधेयक को लेकर था। अब तो तीसरी जो न्यूज थी वो थी खासकर शेयर मार्केट को लेकर के। आज आपने देखा कि कल शेयर मार्केट हमारा बहुत बुरी तरह से गिरा है, लगभग 750 पॉइंट, जो बहुत बहुत बड़ी गिरावट मानी जाती है और पिछले कुछ समय से लगातार शेयर मार्केट गिरता चला आ रहा है। रीजन भी आपने सुने, उसके दो रीजन थे, मैं थोड़े से उसकी चर्चा कर दूं। एक तो उसमें यह था कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बैकअप कर रहे हैं, मतलब पैसा अपना विड्रॉ कर रहे हैं। तो पैसा विड्रॉ क्यों करते हैं, लेकिन पैसा विड्रा करना और सेलिंग दोनों में थोड़ा सा फर्क है जो टर्मिनोलॉजी है। दूसरा शब्द ये भी था कि मार्केट में सेलिंग बहुत हो रही है, तो अलग अलग अगर दोनों एक होते तो कहने की जरूरत नहीं होती। विड्रॉ करने का मतलब होता है कि अब लोगों को लग रहा है, जो इन्वेस्टर्स हैं, कि अब शेयर मार्केट में उतनी कमाई नहीं होगी जितनी कमाई हम दूसरी जगह कर सकते हैं। दूसरी जगह क्या हो सकती है? रियल एस्टेट में पैसा लगा दो, या मेटल खरीद लो, जैसे गोल्ड खरीद लो, सिल्वर खरीद लो, ये सब चीजें हैं, यहां हम खरीदेंगे तो हम ज्यादा कमाई कर सकते हैं। तो अब शेयर मार्केट में उनको ज्यादा दम नहीं लग रहा है। सेलिंग क्यों कर रहे हैं? सेलिंग इसलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए कि मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, मैं शेयर मार्केट में ही काम करना चाह रहा हूं, मैं यही पैसा लगाऊंगा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि नहीं, अभी जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मैं बुक कर लूं, या अगर मुझे प्रॉफिट नहीं भी मिल रहा है तो अभी मैं बेच दूं इस सामान को, बाद में मैं इसे ही सस्ते में खरीद लूंगा, क्योंकि हो सकता है कि शेयर मार्केट और आगे गिरे, आगे चल करके और गिरेगा, तो मैं अभी बेच दूंगा, फिर थोड़े दिन वेट करूंगा, फिर मैं इसी को, जिसको मैंने अभी मान लीजिए 100 रुपए में बेचा है, कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि मैं इसे 90 रुपए में खरीद लूं, इसी को खरीद लूं। इसको कहा जाता है सेलिंग। तो इस वजह से शेयर मार्केट गिर रहा है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भारत की अर्थव्यवस्था उतनी पुख्ता दिखाई लोगों को नहीं दे रही है। अभी जिस तरह से रिफॉर्म होने चाहिए और चीजें होनी चाहिए, चूंकि उस तरह से नहीं हो पा रही हैं, तो लोगों को थोड़ा सा लगने लगा है कि शायद अभी आर्थिक वृद्धि की दर जो तेजी से बढ़ेगी, या इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, या उद्योग में गति आएगी, उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, ये एक इंडिकेशन होता है। तो मित्रों, एक छोटी सी खबर थी कि राष्ट्रीय कौशल विकास नीति सरकार ने बना ली है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब ये बनकर के तैयार नीति हो जाएगी तो हम सब इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए है, कौशल नीति, स्किल पॉलिसी। मित्रों, अब मैं अखबारों पर आता हूं, और अखबारों की काफी चर्चा मैं कर चुका हूं, और जो इसमें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, इसमें ज्यादातर जो क्लिपिंग्स हैं वो हिंदी के हैं, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, उनकी चर्चा मैं अलग से नहीं कर रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो मैं चर्चा कर चुका हूं। अब मैं अंतिम स्टेज पर ही सीधे आता हूं, और वो है ईमेल, जो आप लोगों के जो मेल आए हुए हैं उनके उत्तर। तो मित्रों, एक मेल है आकाश सिंघानिया का, जो सूरत से हैं, एनआईटी के स्टूडेंट हैं और बीटेक फर्स्ट ईयर के हैं। इन्होंने जानना चाहा है कि क्या इन्हें 15 दिन की क्लास अटेंड करनी चाहिए। तो आकाश, मैं इस बारे में पहले भी बताता रहा हूं, और अब भी मैं कहना चाहूंगा कि मैं समझता हूं कि जो भी स्टूडेंट 12th के बाद कॉलेज में एंटर कर जाता है, किसी भी फैकल्टी में, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, यदि वो सिविल सर्विस का इच्छुक है, तो वो जितनी जल्दी ये क्लासेस अटेंड करेगा, वो अपने को उसके अनुकूल, जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की जो स्टाइल होती है, जो उसका कल्चर होता है, उसके अनुकूल अपने आप को ढाल सकेगा। तो चीजें उसको उतनी जल्दी पकड़ में आ जाएंगी, और हो सकता है कि जैसे ही वो ग्रेजुएशन पूरा हो और एज आ जाए, मिनिमम एज, वो बैठे और सफल हो जाए। और वैसे भी कम उम्र में नई चीजें जितनी आसानी से सिखाई जा सकती हैं, जब उम्र बढ़ती है तो सीखने और सिखाने में उतनी ही दिक्कत होने लगती है। तो इसीलिए जो मेरी अपनी नीति है वो ये है कि आफ्टर 12th कोई भी स्टूडेंट क्लास अटेंड कर सकता है, और यदि वो वाकई में अटेंड करना चाहता है तो इसके लिए उसे देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो देखेंगे कि खुद जो कॉलेज की जो एजुकेशन ले रहे हैं, इसमें भी इसका उन्हें बहुत अधिक फायदा होगा। मित्रों, अब मैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम ले रहा हूं जिन्होंने मेल लिखे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। इनके नाम हैं शक्ति सिंह, आशीष जाधव औरंगाबाद से, सुनील सोनवाने अहमदनगर से, सिद्धनाथ मिश्र बहराइच से, आशीष मिश्रा कटिहार से, रजत कुमार बोलपुर से, ममता और अंकित राज जोधपुर से, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही इजाजत चाहूंगा, कल फिर मिलेंगे, नमस्कार।